लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, फ्रतेल्ली तुत्ती के पांचवें अध्याय एक बेहतर तरह की राजनीति की चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में कहा कि हमें एक सक्रिय आर्थिक नीति की आवश्यकता है जो अर्थव्यवस्था के उस रूप को बढ़ावा देता है जो उत्पादक विविधता और व्यापार संरचनात्मकता का पक्षधर हो, जिसके द्वारा नौकरियों की उत्पत्ति होती हो न कि कटौती। मूल रूप से त्वरित लाभ के उद्देश्य से वित्तीय अटकलें कहर बरपाती रहती हैं। वास्तव में एकजुटता और आपसी विश्वास के आंतरिक रूपों के बिना बाजार पूरी तरह से अपने उचित आर्थिक कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। श्रोताओं, कुछ बंद और एक रूपी आर्थिक दृष्टिकोण जैसे कि हम पाते हैं लोकोपकारी आंदोलन को बेरोजगारों और अनौपचारिक कार्यकर्ता और अन्य दूसरे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सहज से वर्तमान मौजूदा संरचनाओं में स्थान नहीं मिलता है। इसके बावजूद ये आंदोलन विभिन्न तरह की ख्याति प्राप्त आर्थिक और सामुदायिक उत्पादनों का संचालन करते हैं। यहाँ हमारे लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी हेतु एक मॉडल की आवश्यकता है जिसमें लोकप्रिय आंदोलनों को शामिल किया जा सकता है और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शासन संरचनाओं को नैतिक ऊर्जा के उस धार से जोड़ा जा सकता है जो परित्यक्त लोगों को शामिल करने से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा जन सामान्य भाग्य निर्माण हेतु एक नींव तैयार होता है। इसके द्वारा हम यह निश्चित करते हैं कि एकात्मकता की ऐसी अनुभूतियाँ जिसकी शुरुआत निम्न स्तर से होती है एक साथ आ सकते हैं, वे अपने में अधिक समन्वित हो सकते और एक दूसरे से मिलन जारी रख सकते हैं। यद्यपि यह इस तरह से किया जाए कि यह कार्य करने की उनकी विशेषता को चोट न पहुँचाए जो कि अपने में परिवर्तन के बीज बोने वाले होते, वे महान और छोटे लाखों कार्यों से संबंधित प्रक्रिया के प्रवर्तक होते हैं जो एक कविता की पंक्ति की तरह आपस में जुड़े रहते हैं। इस संदर्भ में ऐसे आंदोलनों को हम सामाजिक कविता स्वरूप पाते हैं जो अपने में कार्य करते हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए स्वतंत्रता को प्रसारित करते हैं। वे एक मानव के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं जो गरीबों के लिए सामाजिक आदर्शों से परे जाता है, क्योंकि वे गरीबों के लिए और गरीबों के संग कभी नहीं होते और न ही वैसी परियोजनाओं के द्वारा लोगों को एकजुटता में लाया जा सकता है। वे अपने में कष्टप्रद हो सकते हैं और कुछ निश्चित सिद्धांतकार उन्हें वर्गीकृत करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, फिर भी हमें चाहिए कि हम उन्हें स्वीकार करें क्योंकि उनके बिना लोकतंत्र अपने में कमजोर एक शब्द मात्र रह जाता है, एक औपचारिकता या अपने प्रतिनिधि चरित्र को खो देता और विखंडित हो जाता है, क्योंकि यह लोगों को उनके भविष्य के निर्माण और अपने सम्मान की प्राप्ति हेतु अपने दैनिक संघर्ष में ही छोड़ देता है। श्रोताओं, संत पापा सन 2007-08 में हुई आर्थिक संकट की स्थिति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराते हैं, जिसके कारण एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, नैतिक सिद्धांतों के लिए अधिक चौकसता आई और वित्तीय प्रथाओं और चल अचल धन संपत्ति को विनियमित करने के नए तरीकों को गढ़ा गया। लेकिन संकट के समाधान में उन पुराने मापदंडों को शामिल नहीं किया गया जो दुनिया पर शासन करना जारी रखते हैं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि संकट के मद्देनजर दुनिया भर में विकसित रणनीतियों ने अधिक से अधिक व्यक्तिगतवाद, कम एकीकरण और शक्तिशाली लोगों के लिए अधिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, जो हमेशा असंतुष्टों से बचे रहने हेतु रास्ता खोजते हैं। संत पापा फ्रांसिस इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर किसी को जो उचित है दिया जाए, जो हमारे लिए न्याय की उत्कृष्ट परिभाषा को व्यक्त करता है। इसका अर्थ यही है कि कोई भी मानव या समुदाय अपने को सर्वश्रेष्ठ ना समझे, जो उन्हें व्यक्ति की गरिमा या उनके सामाजिक समूहों के अधिकारों को दरकिनार करने को प्रेरित करता है। लोगों के बीच शक्ति का प्रभावशाली वितरण और दावों और हितों के विनिमयन हेतु एक न्यायिक प्रणाली का निर्माण शक्ति को सीमित करने का एक ठोस तरीका है। इसके बावजूद वर्तमान विश्व में हम झूठे अधिकारों को पाते हैं, वहीं दूसरे हैं जिनकी संख्या अपने में अधिक है, जो संवेदनशील हैं, जिन पर शक्ति का गलत उपयोग किया जाता है। 21वीं सदी में हम देशों के राज्यों में शक्ति को कमजोर होता पाते हैं, मुख्यतः आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में, क्योंकि राजनीतिक अपने में हावी होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में यह हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है कि हम अधिक मजबूत और अधिक कुशलता से संगठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को तैयार करें, जो अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सरकारों के बीच समझौते द्वारा निष्पक्ष रूप से नियुक्त करते हों। जब हम कानून द्वारा विनियमित विश्व प्राधिकरण के कुछ संभावनाओं के बारे में बात करते हैं, तो हमें व्यक्तिगत प्राधिकरण के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस तरह के प्राधिकरण कम से कम अधिक विश्व प्रभावी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष करें, जो वैश्विक जन सामान्य के हित, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन तथा मौलिक मानवाधिकार को सुरक्षा प्रदान करता हो। इस संदर्भ में संत पापा कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूपों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और साथ ही आर्थिक संस्थानों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों में, ताकि राष्ट्रीय परिवार रूपी सोच को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। यह स्पष्ट रूप से कानूनी सीमा की मांग करता है, जो केवल कुछ देशों के हाथों में सीमित है, जिसके आधार पर वे सांस्कृतिक मतभेदों को रोकने के लिए या वैचारिक मतभेदों के आधार पर कमजोर देशों की बुनियादी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक न्यायिक समुदाय है, जो प्रत्येक सदस्य राज्य की संप्रभुता पर स्थापित होता है, जो अधीनता के बंधनों के बिना अपनी स्वतंत्रता को अस्वीकार या सीमित करता है। साथ ही संयुक्त राज्य का कार्य, जैसे कि उनकी प्रस्तावना में उल्लेखित सिद्धांतों और उसकी संरचना विशेषाधिकार के प्रथम लेख में है, इस नियम को विकास और कानूनी व्यवस्था को प्रोत्साहन देना है, जो इस बात पर जोर देता है कि न्याय एक अनिवार्य शर्त है, जो सार्वभौमिक भ्रातृत्व के आदर्श को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। इसके लिए कानून का निर्विरोध शासन और वार्ता हेतु अथक प्रयास को सुनिश्चित करने की जरूरत है, जो संयुक्त राष्ट्रों के विशेष अधिकार में प्रस्तावित किया गया है, जो वास्तव में एक मौलिक न्यायिक आदर्श का गठन करता है। इस संगठन को प्रतिनिधि बनने से रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी समस्याएं और कमियां संयुक्त रूप से संबोधित और समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रैटेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सोमवार को वैटिकन में हुई कार्डिनलों की कंसिस्ट्री में संत पापा फ्रांसिस ने सात धन्यों की संत घोषणा की पुष्टि की। संत घोषणा की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को वैटिकन के प्रेरितिक आवास में धन्यों की संत घोषणा पर आयोजित कार्डिनलों की सभा का संचालन किया। कंसिस्ट्री के दौरान कार्डिनलगण कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी की मदद समूह में पूरी कलीसिया के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए सलाह देने के द्वारा करते हैं। सोमवार की सभा में संत पापा ने कार्डिनलों के वोट के माध्यम से सात धन्यों की संत घोषणा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। धन्य लाजरुस जिन्हें देव सहायम के नाम से भी जाना जाता है, वे भारत के एक ब्राह्मण थे। सन 1745 में एक जेसुइट पुरोहित के द्वारा उन्होंने कैथोलिक धर्म को अपनाया और एक ख्रिस्ते के रूप में अपना नाम लाजरुस रखा। अपनी धर्म शिक्षा में उन्होंने अलग अलग जाति के होने के बावजूद सभी लोगों की समानता पर विशेष जोर दिया। उनकी इसी शिक्षा के कारण उच्च जाति के लोगों में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हुई और उन्हें 1749 में गिरफ्तार कर लिया गया। कई प्रकार के अत्याचार सहने के बाद वे 14 जनवरी 1752 को मार डाले जाकर शहीद हो गए। धन्य लाजरुस भारत के पहले लोकधर्मी हैं जिनकी संत घोषणा की जाएगी। संत घोषणा के उम्मीदवारों में धन्य चार्ल्स दी फकाल्ट एक फ्रांसीसी सैनिक थे। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका की यात्रा की थी। शुरू में वे एक भटके हुए कैथोलिक थे जिन्होंने 28 साल की उम्र में विश्वास को अपनाया। धन्य चार्ल्स ने अपनी बुलाहट को पौत्र भूमि की यात्रा के दौरान पाया। 43 साल की उम्र में उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। उसके बाद वे नाइजीरिया के मरुस्थल गए जहां उन्होंने ध्यान साधना, प्रार्थना और अध्ययन में बिताया। 1 दिसंबर 1916 को वे दंगाइयों के गिरोह के द्वारा मार डाले गए। धन्य चार्ल्स ने एक आध्यात्मिक परिवार को प्रेरित किया है जो उनके आदर्शों को अपनाता है। सोमवार की सभा में संत घोषणा हेतु प्रस्तावित तीन पुरोहित हैं जिन्होंने धर्म संघों की स्थापना की है। वे हैं जेसार्दी पुस, लुइजी मरिया पलाजोलो और जुस्तीनो मरिया रुसोलिलो तथा दो धर्म बहने हैं जिन्होंने धर्म समाजों की स्थापना की है। वे हैं येसु की मरिया फ्रांचेस्का और मरिया डोमिनिका मंतोवानी। संत पापा फ्रांसिस ने पुर्तगाल के वेदी सेवकों को एक संदेश भेजा है जो 25वीं राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा मनाने वाले हैं एवं उनका आह्वान किया है कि वे येसु से मुलाकात करने के उत्साह को बनाए रखें और प्रभु प्रदत्त उपहार एवं अपनी व्यक्तिगत क्षमता को अर्पित करने में सच्चे बने रहें। पुर्तगाल के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के धम्म विधि एवं आध्यात्मिकता आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष जोश मिगवेल गर्चा के नाम प्रेषित संदेश में संत पापा ने कहा है कि हमारी माता मरियम अपने पास वेदी सेवकों को देखकर खुश हो जाएंगी और काना में येसु के पहले चमत्कार के समय जिस तरह उन्होंने सेवकों से फुसफुसाकर कहा था उसी तरह उनसे फुसफुसाकर कहेंगी, वे तुम लोगों से जो कुछ कहते हैं वही करना। संत पापा ने संदेश में लिखा है, येसु आप सभी से पहली चीज कहते हैं पौत्र बनो। उन्होंने याद दिलाया कि वेदी तक पहुंचने के कारण वे सौभाग्यशाली हैं, जहां रोटी और दाखरस बलि परिवर्तन के समय येसु के शरीर एवं रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। यद्यपि हमारी आंखें येसु को देख नहीं पाती, होंठ और हृदय उनकी आराधना करते हैं। संत पापा ने उनसे आग्रह किया है कि वे अपने व्यवहार को पौत्र चीजों की सेवा के अनुरूप रखें तथा अपने आंतरिक और बाह्य मनोभाव को अपने कार्य के साथ तालमेल में रखें, खासकर उस समय जब वे वेदी के निकट हों अथवा क्रूस का चिन्ह बनाते हों, बैठते या समुदाय के साथ प्रार्थना एवं भजन गाते हों। संत पापा ने कहा है कि सम्मान और आंतरिक चिंतन से प्रेरित एक वेदी सेवा के रूप में उनकी सेवा समुदाय के लिए विश्वास की अभिव्यक्ति बन जाएगी। संत पापा फ्रांसिस ने महामारी और विभिन्न समस्याओं के कारण विश्व में आर्थिक समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है ताकि खतरों से नागरिकों की रक्षा की जा सके। संत पापा ने 4 अप्रैल के ट्वीट संदेश में लिखा, आइए हम एक साथ प्रार्थना करें ताकि जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, वे सरकार के साथ मिलकर वित्तीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए कार्य करें और इसके खतरों से नागरिकों की रक्षा करें। पोप फ्रांसिस ने 3 मई को इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन का वैटिकन में स्वागत किया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी के अनुसार संत पापा ने सोमवार को इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन से मुलाकात की। पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए ब्रूनी ने बताया कि मुलाकात 30 मिनट तक चली, जिसमें संत पापा ने हाल में हुई इराक यात्रा में अपने स्वागत को कृतज्ञतापूर्वक याद की। उन्होंने यह भी बतलाया कि संत पापा ने इराक वासियों का सास्नेह अभिवादन किया तथा आशा व्यक्त की है कि सभी लोग एकजुटता में बढ़ पाएंगे एवं दूसरों की दुर्बलता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे। ज्ञात हो कि संत पापा फ्रांसिस ने 5 से 8 मार्च 2021 को इराक की प्रेरित यात्रा की थी। इस यात्रा के द्वारा वे पहले पोप बन गए हैं जिन्होंने मध्य पूर्व के इस देश इराक की प्रेरित यात्रा की है। वैटिकन संग्रहालय को कोविड-19 स्वास्थ्य नवाचार के कारण बंद किए जाने के बाद 3 मई को पुनः खोल दिया गया है। कोविड-19 महामारी रोकने के लिए इटाली और वैटिकन के स्वास्थ्य नवाचार के अनुसार वैटिकन संग्रहालय को दर्शकों के लिए पुनः खोल दिया गया है। यह 3री बार है कि वैटिकन संग्रहालय को कोरोना वायरस के कारण बंद किए जाने के बाद खोला गया है। पहली बार इसे 9 मार्च 2020 को बंद किया गया था जब इटली में कोरोना वायरस से संक्रमण और मौतों की संख्या बढ़ रही थी। सरकार ने 9 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके साथ ही वैटिकन म्यूजियम को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि वैटिकन म्यूजियम के वेबसाइट पर मुफ्त में वर्चुअल पर्यटन उपलब्ध था। वैटिकन म्यूजियम की निदेशिका बरबरा जत्ता की उम्मीद है कि 3री बार खुलना ही अंतिम बार खुलना होगा। वैटिकन रेडियो से बातें करते हुए वैटिकन संग्रहालय में सुरक्षा और इसकी नई विशेषता के बारे उन्होंने बतलाया। जत्ता ने सभी के लिए इस कठिन समय में खेद प्रकट किया, जिसमें संग्रहालय भी शामिल है, जिससे 80% का घाटा सहना पड़ा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।